भगवान देवी भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री नवद्वीप धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय। निताई गौर प्रेमानंदी समावेत भक्त वृंद की। समावेत भक्त वृंद की। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपस्तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साद्विजातम् सहगणा रघुनाथान्वितं हंस जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णदैतं हृदि श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्कृते कत्कांजनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विशाखानुसुते देवी प्रणमामि हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्रीअद्वैत गदाधर शिवाश्वभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. इस रविवार के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। कुछ दिनों में हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाने वाले हैं और बलराम जी के आविर्भाव दिवस और पिछले दो तीन दिनों में हमें भगवान श्री कृष्ण की जो जन्म का प्रसंग है श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंध से, उसमें हम चर्चा कर रहे हैं। और पिछले दो दिनों में जो चर्चा किया वहां से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। संक्षिप्त रूप में पिछले दो दिनों में जो हमने चर्चा किया दशम स्कंध के प्रथम अध्याय में, उसके पहले भाग में पहले 15 से 16 श्लोक जो है, वहां परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं। परीक्षित महाराज को शाप मिला था, 7 दिन में वो शरीर छोड़ने वाले थे और उन्होंने कृष्ण कथा को प्रामुख्यता देकर, हालांकि वो पूरे विश्व के सम्राट थे, नौजवान थे, पत्नी थी, बच्चे थे, सम्मान था, नाम था, प्रभाव था, पर क्योंकि सतर्क थे अपने जीवन का उद्देश्य से, तो जब उनको पता चला कि अभी मेरी जीवन की अवधि केवल 7 दिन की है, तुरंत उन्होंने सब छोड़कर कृष्ण में केंद्र रखा। ये सतर्कता का लक्षण है। मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है अगले जीवन की तैयारी, यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य, अगले जीवन की तैयारी। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, बच्चा स्कूल जाता है, पढ़ाई कर रहा है, क्यों? जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं एक अच्छा स्थिति में स्थित हो जाऊंगा, इसीलिए अभी मैं तपस्या कर रहा हूं। बचपन में व्यक्ति बहुत तपस्या करता है, स्कूल में जाना, चाणक्य पंडित कहते हैं काक स्नानम बको ध्यानम श्वान निद्रा कुक्कुट भोजनम। एक विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए? काक स्नानम, कौवा कैसा स्नान करता है, बस हो गया, 3 बार ऐसा डुबकी लगाता है छोटे से पानी में, ऐसा ऐसे विद्यार्थी को काक स्नानम स्नान करके निकल जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आराम से शवर के नीचे आधा घंटा का स्नान, बको ध्यान, बगुला कैसा ध्यान करता है, हालांकि वो मछली पर करता है, हमको मछली पे नहीं, पढ़ाई में ध्यान करना चाहिए। ध्यान लगाया तो कुछ भी हो जाए बाहर, काक स्नानम बको ध्यान, श्वान निद्रा, कुत्ते जैसा सोना चाहिए। अब देखिए कुत्ता कैसा सोता है, थोड़ा भी आवाज आए तो पुं, एक कान उठा के देखता है। जैसा हमारे घर में भी हम सोते हैं, विद्यार्थी को खास करके थोड़ा भी अलार्म बजा उठ जाना चाहिए, फिर सोना नहीं चाहिए। श्वान निद्रा, और हमेशा सतर्क रहता हूं। और कुक्कुट भोजन, मुर्गी जैसा खाना चाहिए, टुक 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 खत्म, आगे बढ़ो। मतलब कम से कम शरीर के समय कम लगाकर ज्यादा, जिस उद्देश्य से हम एक विद्यार्थी बने, विद्यार्थी मतलब विद्या को ग्रहण करना, और विद्या को प्राप्त करके उसको अपने जीवन में उतारना नवयुवक बनने के बाद। तो विद्यार्थी जीवन में यौवन की तैयारी कर रहे, और यौवन में बुढ़ापे की तैयारी कर रहे, और बुढ़ापे में अगले जन्म की तैयारी, मतलब हमेशा भविष्य जीवन की तैयारी बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है। जो पशु जैसे लोग होते हैं वो सतर्क नहीं रहते, बस प्रेयस, प्रेयस मतलब अब भी मेरे को आनंद लेना है, बाद का देखेंगे। हम जब छोटे थे और एक कहानी सुना देते हमको, चींटी और वो ग्रास हॉपर को क्या बोलते, नाक तोड़ा, चींटी और नाक तोड़ा का। चींटी हमेशा परिश्रम करते रहते थे, अभी बारिश आएगा तो बारिश में चींटी घूमने सकते हैं, मर जाएंगे वो लोग, उनके लिए बाढ़ आ गया, सुनामी आ जाता है बारिश आ गया तो वो लोग गर्मी के दिनों में ही सब तैयारी करते हैं। तो जब गर्मी में बहुत परिश्रम कर रहा था चींटी, तो नाक तोड़ा हंस रहा था, कूद रहा था फुक 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 करके, और बोला अरे क्या कर रहे हो सब परिश्रम, बहुत मस्ती करो। बोले नहीं मैं बारिश के लिए तैयारी कर रहा, अरे बारिश देखा जाएगा जब आएगा, और जब आता है तो गिड़गिड़ा कांपता रहता है, कुछ नहीं मिलता उसको, ऐसे बैठा रहता, और चींटी मुस्कुराता उसको देख के, तुला सांगितलं होतं मी। तो अगले जीवन के लिए सतर्क रहना, ये मनुष्य जीवन का लक्षण है। लाइफ इज ए प्रिपरेशन, डेथ इज द एग्जामिनेशन। जीवन एक तैयारी है, मृत्यु परीक्षा है। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु। जो जन्म लिया है उसको मृत्यु निश्चित है 100%, और जो मरता है उसके लिए अगला जन्म निश्चित है, तो है ही। तो इसीलिए उसकी तैयारी करना, वो लक्ष्य कभी खोना नहीं चाहिए हमें, वो लक्ष्य कभी नहीं खोना चाहिए। वो चीज हम परीक्षित महाराज से यहां सीखते हैं। भले बड़े बड़े जवाबदारी ले रहे हैं, पूरे विश्व की जवाबदारी ले रहे हैं, कली को पकड़ के रखा था, वो कली को वश में करके रखा था, कली की हिम्मत नहीं थी परीक्षित महाराज के इसमें प्रवेश करने के लिए, तो व्यस्त थे वो, पूरे विश्व का चलाना जिम्मे जवाबदारी लेना आसान नहीं है, पर ऐसा नहीं कि उस जवाबदारी में इतने घुस गए कि अपने जीवन का लक्ष्य खो बैठे। हर एक व्यक्ति को अपना विमान अपने उड़ाना है, प्रभुपाद कहते हैं। विमान उड़ाने से फाइटर प्लेन कैसा होता है, एक ही व्यक्ति बैठ सकते हैं उसमें, दो दो व्यक्ति नहीं बैठ सकते, वो जेट प्लेन जैसा नहीं होता है, या बड़ा बोइंग 747 उसमें 350 लोग पूरे परिवार के साथ बैठे, ऐसा नहीं, फाइटर प्लेन में एक एक होता है, और फाइटिंग मतलब पता नहीं वापस आएगा कि नहीं। तो जाने से 350 ऐसा डायल्स होते हैं, कंट्रोल्स, तो सतर्क रहना पड़ता है हमेशा। तो बैठने से पहले ट्रेनिंग दिया जाता है, बैठने के पहले भी थोड़ा बताते हैं, लास्ट में वो जो ट्रेनर होता है बोलते देख ऐसा हुआ तो ऐसा करने का, ऐसा हुआ तो ऐसा करने का, और ऐसा नीचे हुआ तो ऐसा, सब लीवर सब सिखा दिया, और बोलता है ऑल द बेस्ट, हरे कृष्ण। अभी जब तू उड़ाएगा उस समय तुम्हें कोई मदद नहीं कर सकता, दूसरा पायलट आके उसको इन करके उठा नहीं, ऊपर नहीं उठा सकता। इस तरह से अंतिम सांस तक कोई मदद कर सकता है, लास्ट तक, अंत में जो स्मरण करने की जो ये है वो हमारे ऊपर निर्भर है, तो पूरी तैयारी हो। तो परीक्षित महाराज ने सतर्कता दिखाई। महाराज खटवांग देवताओं के लिए लड़ने के लिए गए, और लड़े लड़े लड़े, उनकी बहुत आयु, देवताओं की आयु हमारी आयु में बहुत अंतर है, तो लड़ रहे थे लड़ रहे थे। उसके बाद लड़ाई में जीत हुई, उसके बाद उन्होंने देवताओं से, देवता बोले वर मांगो कुछ, तुमने हमारे लिए लड़ाई किया, वर मांगो। तो बोले कितना समय बाकी है, वे नहीं बोले कि इतना समय लड़ा किया, अभी मैं आराम से थोड़ा आराम से सोना चाहता हूं, मस्ती करना चाहता हूं, कुछ भी मांग सकते थे। बोले कितना समय, एक क्षण बाकी है। बोले तुरंत सब छोड़कर पृथ्वी पर आकर ध्यान किए, और अपने जीवन को सफल किया। जैसे गाड़ी चलाते वक्त देखते रहना पड़ता है सामने खड्डा है क्या, खास करके कोल्हापुर में बारिश के दिनों में इधर उधर देखते देखते जाएंगे तो। एक बार मैंने एक्चुअली देखा, सामने एक व्यक्ति जा रहे थे स्कूटर में, माता जी भी हट्टी कट्टी थी पीछे बैठी हुई थी, फुल स्पीड में जा रहे थे और ठुंक करके ऐसा हुआ और माता जी पीछे ही रह गई और गाड़ी आ रही थी। सबसे आश्चर्य की बात, प्रभु जी को पता ही नहीं चला, प्रभु जी मतलब भक्तों को नहीं, मतलब जो पुरुष थे वो साए जा रहे, ये इधर से हम गाड़ी में जा रहे थे, उनको बोलना पड़ा देखो पीछे कोई सामान गिर गया दूसरी बात है, उनको बोलना पड़ा। फिर पीछे बोलते पता नहीं उनको समझा कैसा, नहीं मतलब शायद बहुत ध्यान देते होंगे पर किस चीज पे ध्यान नहीं मालूम। तो सतर्क प्रभु जी कह रहे जानबूझ के होगा, अभी अनुभव नहीं है प्रभु। तो हमेशा सतर्क रहना। तुरंत उन्होंने कहा ये सब छोड़ दिया, पूरा ध्यान देके तैयारी करना अगले जन्म की। तो जन्म निश्चित है पर कैसा जन्म, कुत्ते बिल्ली का जन्म या सेम इसी पृथ्वी पर दूसरा मनुष्य का जन्म या देवताओं का जन्म। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। रास्ता ऊपर का है, मध्य का है, नीचे का है, पर बुद्धिमान व्यक्ति है वो ऊपर नीचे इसमें अटकता नहीं है। हाँ ब्रह्म भुवना लोक का पुनरावत, ये फिर से आना जाना हमको नहीं है। तो मनुष्य जीवन में सतर्कता परीक्षक महाराज का उदाहरण है। सब जिम्मेदारी निभा रहे थे पर अपने साधना के साथ और अच्छे संग के साथ उन्होंने अपना लक्ष्य की ओर सतर्कता रखी कि ये सब आएगा जाएगा। मूर्खतावश हम समझते हैं कि हम दुनिया का भलाई कर सकते हैं, नहीं, भगवान की कृपा है, कुछ हुआ हमसे तो हुआ। तो इस तरह से परीक्षित महाराज को जब पता चला 7 दिन बाकी है, तुरंत आके बैठ गए। 5 दिन हो गया, दशम स्कंद आ रहा है, न खाए हैं न पिए हैं न सोए हैं, पर उत्साह कितना है उनका। बड़े उत्साह के साथ कहते हैं धन्यवाद सुखदेव गोस्वामी जी, मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूं कि आपने 5 साल, मैं तो एक हफ्ता बाकी है इसीलिए मैं बैठा हुआ हूं, सोया नहीं हूं, खाया नहीं हूं, पिया नहीं हूं, पर आप भी मेरे लिए न खाए न पिए न सोए और बोलते जा रहे, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत कृतज्ञ हूं कि आप इतना समय निकालकर मुझे सबसे बड़ी जरूरत के समय में आप आए हो भगवान की कृपा के रूप में। और अभी तक आपने 9 स्कंद में सोम और सूर्य वंश के सारे महान राजाओं के परमाद्भुतम अद्भुत कथाओं का वर्णन किया है, भगवान की कथाओं का वर्णन किया है, अब कृपया भगवान श्री कृष्ण के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करना। क्योंकि हो सकता है सुखदेव गोस्वामी सोचे कि बेचारा अभी 2 दिन बाकी है, जब समय कम होता है तो हर एक व्यक्ति कुछ शॉर्टकट में करना चाहता है, बाकी कम समय है, काम ज्यादा है तो शॉर्टकट में फटफट कर देना। बोले ऐसा मत कीजिए, मुझे कोई मतलब दूसरी चीजों की चिंता नहीं, मैं खास यहीं इसलिए बैठा हूं, विस्तृत रूप से कथा कहिए। क्यों? वो कहते हैं बहुत सुंदर से कहते हैं कि हरि कथा ही, कृष्ण कथा ही एकमात्र आश्रय है इस भौतिक संसार को पार करने के लिए। निवृत्त तर्शय रूपगीयमाना भवोषदा श्रोत्र मनोभिरामा कौत्तम श्लोक गुणानुवादा पुमान विरज्जित विना पशुगुणा। बोले 3 प्रकार के लोगों के लिए जरूरत है, जो निवृत्त तृष्णा पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त हैं, जिनके हृदय में रंच मात्र लेश मात्र भी भौतिक इच्छाएं नहीं है, उनके लिए सततम कीर्तयंतो मां, ये महात्मा है, उनके लिए कोई तकलीफ ही नहीं है। उनके लिए एक क्षण में कृष्ण का स्मरण न होना सबसे बड़ी तपस्या है। दुख लगता है उनको कि एक क्षण गया और मैं स्मरण नहीं किया। तो उनके लिए निवृत्ततर शरीर उपगीयमान पूर्ण रूप से मग्न होकर लगातार परंपरागत वो चर्चा करते हैं, और हम जैसे साधकों के लिए जिनको हरि कथा का अगर दो घंटे से ज्यादा हो गया तो भूख प्यास नींद और उससे भी ज्यादा हो गया तो बोलते जो करना है भोरू मैं निकलता हूं सोता हूं या खाता हूं जो भी, हमारे लिए किस तरह से भवौषधि औषधि के रूप में लेना हमको। जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना 3 चम्मच दिन में 3 बार 6 घंटे में 1 बार खाने के बाद सोने से पहले, इस तरह से हमको बोला जाता है कम से कम 16 माला, हो सके तो 10 बजे से पहले सुबह, उसके बाद कम से कम 4 नियमों का पालन करो और हो सके तो गीता पढ़ो, थोड़ा भागवत पढ़ो, थोड़ा संग करो, औषधि के रूप में बताया जाता है। किंतु आदरात अनुबिनम खलु सैव जुष्ट्व, तो हम औषधि के रूप में हमको लेना चाहिए। और कौन औषधि को गंभीरता से लेगा, जब उसे विश्वास है कि जो डॉक्टर है सही डॉक्टर है, और दूसरा मेरा बीमारी जो है बहुत गंभीर है, इसको मैं आराम से नहीं ले सकता, मजाक में नहीं ले सकता, और ये बीमारी मुझको मार सकती है, मेरे प्राण खतरे में है। तो जिस हद तक बीमारी को गंभीरता से लेंगे, भवरोग पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनन, बहुत गंभीर है ये, करोड़ों करोड़ों बाद जन्मों के बाद हमें मनुष्य योनि मिली है, और ऐसी चली जाएगी देखते देखते चली जाएगी, देखते देखते समझता ही नहीं है 60 साल हो गया। अच्छा, जब केक के ऊपर हैप्पी 60th बर्थडे, 60 थोड़े दिन पहले मैं ट्रेन में जा रहा था, प्रभु जी ने हमको रोटी भेजा था, रोटी खा रहे थे हम, तो एक माता जी सामने बैठी हुई थी, वो बच्चे को लेके, बग अजवा कैसे खाते है बस। मैं बोला वो खुद अजो भी है वो, मेरे को, मैं बोला बच्चे को बोल रही है सही है, फिर भी पहली बार मेरे को लगा बाप रे, मेरे को तो लगता था मैं अभी भी ज्वाइन किया हट्टा कट्टा ब्रह्मचारी हूं। तो जब उसने बोला उस दिन मैं आईने में जाके खड़ा हो गया, देखा बात तो सही है, हमें लगता नहीं है, हमें लगता नहीं है, हट्टा कट्टा नौजवान बोलता अंकल थोड़ा साइड में हो जाओ ना अंकल, इस तरह से ऐसा। तो समय कैसा जाता है समझता नहीं है, देखते 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 देखते, उठ गया तो बैठना तकलीफ, बैठ गया तो उठना तकलीफ, तब समझ में आता है इसी को बुढ़ापा कहते हैं, ये जरा है जिसके बारे में 30 साल से तू प्रवचन दे रहा है, ओ अच्छा ओ हो जरा है आ जाता है देखते देखते देखते, समझता नहीं है। तो भवौषधा, ये भवरोग है, ये बहुत गंभीर है, बार बार फिर मैं मां के गर्भ में जाना, और कौन से माता के गर्भ में जाएंगे क्या मालूम। अब देखो कभी छोटे बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे इसमें गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में सर रखे रहते, कैसा योगी भी बैठ नहीं सकता, वो भी शर्मा जाएगा, ऐसा आसन में बैठना पड़ता है 9 महीना, और वो क्या क्या खाती है, क्या क्या होता है। तो जो व्यक्ति गंभीरता से लेगा बीमारी को, और उसको पूरा विश्वास है डॉक्टर में और दवाई में, वो व्यक्ति हमेशा सतर्क रहेगा। ही विल नेवर टेक द मेडिसिन द डॉक्टर एंड द डिजीज फॉर ग्रांटेड। चलता नहीं, बहुत गंभीर चीज है, और हमको अटकना नहीं है इस दुनिया में। दुनिया में यशस्वी हो गए, नाम कमा लिए, पर अगर भगवान भगवत धाम में हम अगर नहीं जाएंगे तो लाभ क्या। तो परीक्षित महाराज कह रहे बड़े आश्रय ले रहे हैं, हरि कथा का आश्रय ले रहे हैं, और फिर कहते हैं क्यों मैं आश्रय ले रहा हूं, क्योंकि पिता महामे समरे मरंजयी देवव्रत आद्यातिरथे तिमिंगले दूरत्ययम् कौरव सैन्य सागरम। मेरे पितामह पांडव कौरव सेना के समुद्र के सामने खड़े हुए थे और उसमें भी भीष्म जैसे तिमिंगला मछली जो है निगलने के लिए तैयार थी और हम तो कुछ भी नहीं थे उनके सामने, तुच्छ थे भीष्म पितामह के सामने। परशुराम को उन्होंने के समान थे वो, जिन्होंने 21 बार क्षत्रियों को हराया था, ऐसे परशुराम को हराने वाले व्यक्ति भीष्म पितामह सामने खड़े हुए, कोई जीतने का संभावना है? द्रोणाचार्य जिन्होंने उनको सिखाया धनुष बाण पकड़ना, कृपाचार्य ऐसे बड़े 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 महारथी और 11 अक्षौहिणी, पर क्योंकि मेरे पितामह 5 पांडव ने कृष्ण का आश्रय लिया, कृत्वा तरन वत्स पदम स्मयत प्लवा, गाय के बछड़े के खुर में जितना पानी है चुल्लू भर पानी जैसे पार कर गए वो लोग, क्योंकि कृष्ण का आश्रय लिए। मैं खुद परीक्षित महाराज कहते हैं अपनी मां के गर्भ में ब्रह्मास्त्र मेरे पर छोड़ा गया था, अश्वत्थामा द्रौण्यस्त्र विप्लुष्ट मिदम मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवान, द्वेष से अश्वत्थामा ने सीधा ब्रह्मास्त्र छोड़ा। एक बच्चे वो भी पूर्ण रूप से निस्सहाय बच्चा मां के गर्भ में, उसको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र जो कभी छोड़ने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता, ऐसे परिस्थिति में भी क्योंकि मेरी मां मातुश्च में यह शरण गताया, क्योंकि मेरी मां ने शरण लिया भगवान श्री कृष्ण का, ओ कृष्ण ने अंदर गर्भ में प्रवेश करके गत आप्त चक्रो चक्रधारी श्री कृष्ण आकर देखे, बोले कौन सा अस्त्र देखने दो मैं तेरे सुदर्शन के सामने, जो काल के रूप में प्रभाव में आते हैं, परमात्मा के रूप में अंदर से काल के रूप में बाहर से सब जगह वो मौजूद है, उनको शरण न जाके और कहां मैं जाऊं। इसीलिए इस समय जब मृत्यु पास आ रही है मैं पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेना चाहता हूं। सुखदेव गोस्वामी महाराज जी कृपया बोलते जाइए। प्रश्न पूछते हैं, काफी प्रश्न पूछते हैं, भगवान का जन्म ऐसे क्यों हुआ, फिर कहां गए, वृंदावन में क्या किए, मथुरा में क्या किए, द्वारका में क्या किए, कितना विवाह हुआ, क्या नहीं मालूम था, सुने थे कई बार सुने थे पर उत्सुक था, ऐसे सुन रहे मानो पहली बार सुन रहे। ये रुचि या भक्ति का लक्षण है, क्योंकि कृष्ण नवनवायमानम, भौतिक चीज बार बार सुनने से थक जाता है आदमी, बोर हो जाता है, एक बार सुना है ना कितने बार सुनाएगा, पर कृष्ण कथा ऐसी है कृष्ण के समान ही, कृष्ण हमेशा नए लगते हैं, कृष्ण की लीला हमेशा नई लगती है। सुनाइए 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 और तत्पश्चात सुखदेव गोस्वामी शुरू करते हैं कथा जो हमने वो भी चर्चा किया था। सबसे पहले वो कहते हैं कि एक बार पृथ्वी माता ने अनुभव किया कि उनका बोझा बढ़ रहा है, क्योंकि उन पर आसुरी व्यक्ति राजा के रूप में अपने अहंकार को बनाए रखने के लिए करोड़ों करोड़ों की सेना एकत्रित कर रहे हैं और भगवान के विरुद्ध, असुर मतलब भगवान का विरुद्ध, अपना प्रभुत्व जमाने के लिए। तो पृथ्वी माता बोझ अनुभव करने लगी, उसके बारे में भी कल हमने विस्तृत रूप से चर्चा किया, फिर से मैं नहीं कहना चाहता हूं बार बार दोहराना, पर संक्षिप्त रूप में मां को कब बच्चे बोझा लगने लगते हैं, जब वो पिता के विरुद्ध जाए, जब वो कुछ ऐसे अनैतिक कार्य करते हैं, अधर्म के पथ पर चलते हैं, तो मां को बहुत दुख होता है, जिसको उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, आंखों के सामने बाप को गाली देता है, बाप के विरुद्ध जाता है, मां को दुख पहुंचाता है, तब बोझा बन जाता है व्यक्ति। नहीं तो मां के लिए बच्चों का बोझा प्रेम का बोझा है, कोई तकलीफ नहीं उसको उठाने में, कोई तकलीफ नहीं बच्चे को। जैसे कोई धनी व्यक्ति के लिए धन बोझा है क्या, उसको बोलो देख मैं तुझे करोड़ों रुपया देना चाहता हूँ पर तू उठा नहीं पाएगा, कोई चिंता नहीं उठाऊंगा ना। नहीं नहीं 20 किलो 20-40 किलो दो ना। जो धन धनी मतलब बिजनेसमैन के लिए पैसा बोझा है, कितना भी दे दो उठा लूंगा, कोई मदद कुछ नहीं, मैं खुद उठा लूंगा। नहीं पसीना छूटने दो, खून निकलने दो चलेगा, पर लूटा के चलूंगा। प्रेम है उसी लिए तो कर रहे हो। इसी तरह से कभी भी माँ को बच्चे का बोझा, भले सचमुच में बोझा लगे, गंदा कर लेता है उसको साफ करना, उसको स्कूल भेजना, उसको नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना, बोझा है, पर प्रेम का बोझा है, कभी बोझा नहीं लगता। पर कब बोझा लगता है, ये सब करने के बाद वो नालायक निकला और उसके कारण पूरा नाम बर्बाद हो रहा है, तब वो माता को बोझा लगता है। कोई आगे कह के आप उनकी माता हो। हाँ तो इस तरह से ऐसे आसुरिक राजा, और आसुरिक मतलब क्या, स्वार्थी और अहंकारी, और ऐसा स्वार्थी और अहंकारी व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार है, अपना स्वार्थ और अहंकार को पूर्ण करने के लिए कुछ भी। अपनी ही बहन को उसके विवाह के दिन सर से काटने के लिए तैयार है, अपने प्राण बचाने के लिए अपनी ही बहन के एक 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 नवजात शिशु को घुमा घुमा कर चट्टान पे पटक के देखने में तैयार है। जब ऐसे असुर पूरे विश्व में भर जाते हैं, कौन सी माता है जिसको बोझा अनुभव नहीं होगा। तो वो गाय का रूप धारण करती है, क्योंकि गाय को देखकर स्वाभाविक रूप से करुणा उत्पन्न होता है। तो गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास जाती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये जो स्थिति है मैं कुछ नहीं कर सकता। देखिए ब्रह्मा जी बहुत शक्तिशाली हैं, 84 लाख योनियों की सृष्टि किए हैं, पर कुछ चीजें वो भी नहीं कर सकते। हिरण्याक्ष के संदर्भ में आता है, जब मनु आए, मनु का उत्पन्न हुआ, स्वयंभू मनु आके कहा कि महाराज, उनके पिताजी को कहे, पिताश्री मुझे एक स्थान दीजिए और मुझे अपना सेवा बताइए। बोले तुम मानव को मार्गदर्शन दो और तुम्हारा स्थान है पृथ्वी। बोले पृथ्वी तो डूब रहा है, गर्भोदक में चला गया अंदर। वो उठाने की शक्ति ब्रह्मा जी को नहीं थी, ब्रह्मा जी को नहीं थी, पर ब्रह्मा जी को पूर्ण विश्वास था कि मैं क्योंकि भगवान की सेवा में लगा हुआ हूं, पूर्ण रूप से प्रामाणिकता से भगवान मुझे मदद करेंगे। और पूर्ण मग्न से ध्यान करने लगे कि प्रभु, एक भक्त जितना भी तकलीफ आ जाए जीवन में, निरुत्साही नहीं होता कभी, निरुत्साही नहीं होता अगर उसे भगवान में विश्वास है और अगर वो प्रामाणिक है। ये नम्रता का लक्षण। एक अहंकारी व्यक्ति यश मिला तो सर पे चढ़ जाता है, उसका अहंकारी बन जाता है, और अगर अपयश हो गया तो सुसाइड कर लेगा, उसका उत्साह सब खत्म हो जाता है। भक्त नम्रता और क्या हम लोग चर्चा कर रहे थे सुबह, आत्म सेल्फ पिटी, आत्मविश्वास, आत्म क्षीणता, मतलब अपने आप को बहुत, उसमें दोनों में अंतर है। सेल्फ पिटी मतलब अपने आप, मैं क्या हूं, मैं ऐसा हूं, मैं गया हूं जना। ऐसा व्यक्ति को अगर यश मिल जाए तो सर पे चढ़ जाता है उसका, करता हम इति मन्यते, और अगर अपयश हो जाए तो जहर पी के मर जाएगा, हिटलर जैसा, सहन नहीं होता। जब यश मिला तो सर पे चढ़ गया उसको, और जब अपयश हुआ तो जहर पी के मर गया। पर भक्त नम्र होने के कारण जब यश मिलता है और भी नम्र हो जाता है कि प्रभु मैं जानता हूं मैं क्या हूं, मैं एक ऐसा साधन हूं टूटा फूटा, ये आपकी महिमा है कि मेरे जैसे व्यक्ति से आपने ऐसा ऐसा काम करा लिया। और जब कुछ नहीं होता और उसको भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है,
धन्यवाद प्रभु। अर्जुन, अर्जुन जब कुरुक्षेत्र की भूमि में बड़े बड़े महारथियों को मारा, उसको अहंकार नहीं था, उसे मालूम था भगवान है इसीलिए सब कुछ हो रहा है। और वही अर्जुन 6-8 महीने के बाद वापस आ रहा था और कुछ ग्वाल बाल लोग आकर महा भगवान भगवान की रानियों को उठा के ले गए और वही वही गांडी वही रथ वही घोड़े अर्जुन बचा नहीं पाया। दिव्य आनंद का अनुभव कर रहा था कि उस समय भगवान ने मुझे उपयोग किया, ये मेरा सौभाग्य। आज वो काम हो गया तो उन्होंने पावर ले लिया, वो शक्ति ले ली है। मैं कृतज्ञ हूं कि कम से कम एक बार मुझे भगवान ने उपयोग किया, डिप्रेशन में नहीं गया। तो एक नम्र व्यक्ति न यश में न अपयश में, शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो अनित्या। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी जब देखे मैं कुछ नहीं कर सकता, ध्यान करने लगे और तब ब्रह्मा जी के नाक से वराह देव निकले, यज्ञ मूर्ति। इससे 12 दिखा रहे हैं केवल यज्ञ से पृथ्वी को उठाया जा सकता है। वराह देव का दूसरा नाम है यज्ञ मूर्ति। एक एक उनके शरीर के जो रोम हैं वो एक एक यज्ञ है, अग्निष्टोम यज्ञ, ये यज्ञ, राजसु यज्ञ इत्यादि यज्ञ मूर्ति है। यज्ञ से पृथ्वी को उठाया जा सकता है, नहीं तो अपने बल पे नहीं। तो यज्ञ के विरुद्ध जब चले जाते हैं, संकीर्तन यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधशा। आज का बोझा जो है पृथ्वी का, और कौन सा बोझा है, बोझा क्या है, पाप का बोझा। और पाप क्यों करता है आदमी, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए कोई भी चीजें करने को तैयार है, किसी को मारना, कुछ भी बोलना, कुछ भी करना। और हम देखते हैं ये आसुरी प्रवृत्ति जो है कहां तक व्यक्ति को पतित स्थिति में ले जाती है। तो पाप का बोझा, और हमको भी बोझा लगने लगता है वैयक्तिक रूप से भी, अगर हम कृष्ण भावना में नहीं हो तो बोझा लगने लगता है। पर जब कृष्ण भावना में व्यक्ति है कोई भी चीज उसको बोझा नहीं लगता, भले बोझा है, इतना बड़ा वजन लेके घूम रहा है, पर उसे विश्वास है भगवान चला रहे हैं, ये तो बोझा है। हरिनाम कर रहे हैं, भगवान का आश्रय ले रहे हैं, कोई चीज बोझा नहीं है। बड़े बड़े प्रभुपाद अकेले पूरे विश्व के एक 70 साल की उम्र में कौन ऐसा बोझा उठा सकता है, 10,000 से ज्यादा शिष्य, पूरी संस्था को चलाना, पुस्तक लिखना, कितना बड़ा जवाबदारी उन्होंने लिया 70 साल की उम्र में शुरू हुआ। 70 से 80 साल में पूरे विश्व में इतने सारे मंदिर और पूरे विश्व में अलग अलग जगह फैले हुए, उन लोगों को प्रेरणा देना, एक व्यक्ति को भक्त बनाना कितना मुश्किल है, कितना बड़ा बोझा है। भक्त बनाना एक बात है, उसको बनाए रखना अंतिम सांस तक, कितना बच्चा पैदा करने के लिए 9 महीना मां उठाती है, पर बच्चे को बड़ा करने के लिए, एक योग्य पुरुष बनाने के लिए कितना तपस्या करना पड़ता है। तो आसानी चीज नहीं है, पर बड़े आसानी से कर रहे थे प्रभुपाद। क्यों? क्योंकि ये बोझा मैं आपके ऊपर सौंपा हूं प्रभु। अगर नहीं, जिस हद तक हमारा अहंकार वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, उस हद तक ये चीजें बोझा लगने लगता है। वैयक्तिक रूप से भी, वैयक्तिक रूप से भी जब हम अच्छे तरह से साधना नहीं करते हैं तो छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी बोझा लगने लगती है। तो अगर हमारा साधना चल रहा आराम से होता है, सब कुछ हो रहा है, कैसे हो रहा है वो बहुत चला रहे हैं, कोई समस्या नहीं। तो ब्रह्मा जी प्रार्थना करने लगे, ब्रह्मा जी बोले मैं नहीं कर सकता ये पृथ्वी की स्थिति, आपकी जो बोझा है मैं उसको उतार नहीं सकता, इसके लिए मुझे भगवान के पास जाना पड़ेगा। शिव जी आए सारे देवताओं को लेकर, ब्रह्मा जी श्वेत द्वीप में गए और श्वेत द्वीप में जाकर पुरुष सूक्त के द्वारा प्रार्थना करने लगे। और प्रार्थना करने पर बहुत सुंदर है ये श्लोक है, गिरम समाधौ गगने समीरितम, भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में संदेश भेजा, भगवान आए नहीं। आप देखो भगवान का दर्शन कितना दुर्लभ है। ब्रह्मा जी, शिव जी, सारे देवतागण क्षीर सागर पे बैठकर तपस्या कर रहे हैं, पुरुष सूक्त गा रहे हैं, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। भगवान ने सिर्फ मैसेज भेजा ब्रह्मा जी के हृदय में, आ रहा हूं, ये फलाना एड्रेस पे आ रहा हूं, तुम लोग सब आके मिलो, बस उतना ही, उतना ही कह दिया। आप सोचिए भगवान का आना, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं वो, कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु, भगवान के अवतार आते हैं संभवामी युगे युगे। इवन विष्णु का भी दर्शन, क्षीरोदकशायी विष्णु का भी दर्शन ब्रह्मा और शिव जी के लिए दुर्लभ है। कितने सौभाग्य है हमारा कि हमने कम से कम उनका संदेश सुना है परंपरा में, और वो संदेश हमें भी मिल रहा है जो ब्रह्मा जी को मिला बाद में। तो ब्रह्मा जी को मिला, तब ब्रह्मा जी ने कहा गिरम समाधो, भगवान ब्रह्मा ने समाधि में भगवान विष्णु के शब्दों को आकाश में ध्वनित होते सुना। जैसे इस सुबह हम चर्चा कर रहे थे, इस संसार में भी दूर से अगर कोई हमको कम्युनिकेट करना चाहता है तो क्या करते हैं, फोन के द्वारा बोलते, टेलीफोन वो बोलते हैं। और पर वो जो बोलते हैं, हमें सुनने के लिए दो चीज जरूरत है, एक हमारे पास टेलीफोन होना चाहिए, टेलीफोन है नहीं तो सुन नहीं सकते, और उसमें पैसा भर के कुछ होना चाहिए, सिम कार्ड तो होना चाहिए। इसी तरह से भगवान की वाणी को सुनने के लिए हम सब नहीं सुन सकते, वो शुद्धता, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, 100 साल तपस्या किए ब्रह्मा जी, तब जाके सृष्टि के शुरुआत में भगवान ने तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि बोले, इस तरह से सृष्टि करो, तब उनको समझ में आया, ठीक है। और तब उन्होंने देवताओं से कहा, हे अरे देवताओं, मुझसे परम पुरुष क्षीरोदकशायी विष्णु का आदेश सुनो और बिना देर लगाए उसे ध्यान पूर्वक पूरा करो। और फिर कहते हैं, भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को बतलाया, हमारे द्वारा याचना करने के पूर्व ही भगवान पृथ्वी के संकट से अवगत हो चुके थे। इस दुनिया में एक आदमी बड़ा बिजनेस चलाता है, पर वो बिजनेस के एक 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 कमरे में, एक 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 यूनिट में क्या हो रहा है उसे नहीं मालूम। भगवान ऐसे नहीं है, पूरी सृष्टि में कुछ चल रहा है, अब बाद में कुछ हो गया, उधर राखी लग रहे थे, अच्छा क्या हो गया भाई, लुढ़क गया, पृथ्वी डूब गया, प्रलय हो गया, कौन सा सृष्टि में, अच्छा ये तो सांगा नहीं, ये तो ऐसा नहीं है। अंडांतरस्थ परमाणु चांतरस्थम गोविंदम, तो फिर आते क्यों नहीं है, कभी कभी ये प्रश्न उठता है ना, पहले से मालूम था तो कुछ करे क्यों नहीं। हर एक लोगों की इच्छा अलग होती है, हर एक लोगों का अपना अपना कर्म होता है, आपका घड़ा भरना चाहिए ना, पूरा भरने के बाद, एक बार फोड़ी हो गया था मुझे, लाल हो गया था एकदम, इतना बड़ा फोड़ी एकदम, मैं डॉक्टर के पास गया, बोला 7 दिन के बाद आना, 7 दिन के बाद फोड़ी दर्द हो रहा है, 7 दिन के बाद आना बस, तब तक चाहे तो ये टेबलेट खाना या ऑइंटमेंट लगाना, 7 दिन के बाद आना। मैं बोला क्यों, बोला तब तक पकेगा, पूरा पकने के बाद निकालूंगा। अच्छा क्यों, क्योंकि अभी निकालूंगा तो जो है अभी तक पूरा जो टॉक्सिन है वो सब फैला हुआ है सब जगह, पूरा पूरा इतना हाथ काटना ऐसा नहीं पड़ेगा, पर थोड़ा समय के बाद सब एक जगह आ जाता है, सफेद हो जाता है ऊपर, अब पूरा पक के एक जगह में आ जाता है, उस समय एक करके निकाल दिया, दबा दिया तो पूरा आ जाता है, प्रकृति नैसर्गिक रूप से। और भगवान दिखाना भी चाहते हैं, सबको मौका देते हैं। एक भक्त ने एक बार पूछा, प्रहलाद महाराज को पहले ही नरसिंह देव आए क्यों नहीं, पहला दिन आके कौन है रे वो हिरण्यकशिपु आए घर बोल सकते थे। वो बेचारे को तेल में डाला गया, पहाड़ से फेंका गया, हाथी के नीचे कुचला गया, सांप के इसमें डाला गया, बिच्छू के बीच में डाला गया, जलाया गया, भगवान देख रहे चुपचाप। अरे ऊपर से फेंका गया वहीं आके पकड़ सकते थे, नहीं आने दिया, नीचे आने दिया, नीचे आने, लास्ट में पकड़े आते। हिंदी फिल्म में होता है ना पूरा हीरो मारने के बाद लास्ट में आता है हीरो, पुलिस वाले लास्ट में आते। क्यों ऐसा? कि बहुत कारण है, एक है पूरी दुनिया को दिखाने के लिए, भक्तों को देखो मेरे भक्तों को, सास जो है जो भी सिखाना है अपने बहू को नहीं सिखाती क्योंकि थोड़ा सेंसिटिव रिलेशन है, बहू के सामने अपने बच्ची को बोलती है, अपनी लड़की को बेटी को बोलती है, बेटी हमारे घर में ऐसा नहीं होता, ऐसा पीना पानी। अच्छा वो तो बोलती है, तो 20 साल से वही बोल रही है मुझे, समझ ले बस ऐसा करना है, तो संदेश मिल जाता है बहू को भी। तो बहू को सिखाना है तो बेटी के द्वारा, इसी तरह से भगवान दूसरों को सिखाते हैं भक्तों के द्वारा। देखो मेरे भक्त पांडव को, देखो मेरे भक्त प्रहलाद को, इतना सब तकलीफ है पर श्रद्धा नहीं तोड़ा उसने, छोड़ा नहीं, ये उनकी श्रद्धा है, कितना सहन करने के लिए तैयार हो गया वो। तांस्तिक्ष सुभारत, अरे भगवान खुद सहन किए दिखाने के लिए दुनिया का स्वरूप कैसा है। अपनी बहन सुभद्रा की पुत्री मां पुत्र मारा गया, भगवान ने तो बचा सकते थे ना, द्रौपदी के पुत्र मारे गए तो भगवान को मालूम नहीं था, बचा नहीं सके वो, पूरे संसार का नियम है अपने अपने, हो रहा है ठीक है, ठीक समय पर मैं आऊंगा, धर्म संस्थापन अर्थ है। तो भगवान ने कहा कि मैं आऊंगा, फलतः जब तक भगवान अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार कम करने के लिए पृथ्वी पर गतिशील रहे तब तक तुम सभी देवताओं को यदुओं के परिवार में उनके पुत्रों तथा पौत्रों के अंश के रूप में अवतीर्ण होना होगा। भगवान ने बता दिया कहां मैं आने वाला हूं, एड्रेस कौन सी गाड़ी से आ रहा हूं, एयरपोर्ट में रिसीव करने के लिए तुम लोग आ जाना, बता दिए। यदुकुल में मैं अवतीर्ण होऊंगा, वसुदेव और देवकी के गर्भ से उत्पन्न होऊंगा, आप लोग सब वृष्णि भोज और इस वंशों में आप लोग जन्म लीजिए और इस लीला में मुझे मदद कीजिए, सहायता कीजिए। तो एक प्रश्न उठता है, क्या भगवान को देवताओं की जरूरी है? क्या प्रभु रामचंद्र को रावण को मारने के लिए वानर सेना की जरूरी थी, उसके बिना नहीं मार सकते थे? बोले नहीं, पूरी सृष्टि को चलाने वाले भगवान एक व्यक्ति को मारने के लिए इतना बहुत जरूरी है? महाविष्णु के रूप में सांस ले लिया तो पूरा ब्रह्मांड अंदर घुस जाएगा, तो फिर एक रावण को एक हिरण्यकशिपु को मारने के लिए क्या तकलीफ? उनकी लीला करते हैं और उस लीला के द्वारा बहुत सारे महत्वपूर्ण सीख सिखाते हैं हमारे लिए। अगर ये लीला नहीं करते तो हम चर्चा क्या करते अभी? अगर गोलोक वृंदावन से करके सांस ले लेते और कंस अंदर घुस गया होता तो फिर जन्म लीला कर्म लीला जन्म कर्म चमे दिव्यम कैसा समझ में आता? ये मनोहर लीला जो करते हैं इसके द्वारा बहुत सारे सीख सिखाते हैं हमें, जो हमें सीखना चाहिए। सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण वसुदेव के पुत्र रूप में स्वयं प्रकट होंगे, अतः देवताओं की सारी स्त्रियों को भी उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रकट होना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द, तत्प्रियार्थम संभवंतु सुरस्त्रियः, संभवंतु सुरस्त्रियः। यहां प्रभुपाद महत्वपूर्ण बात बतलाते हैं, ये सुरस्त्रियः उन लोगों को भी मदद करने के लिए आने को बोलो। और ये सुरस्त्रिय मतलब कौन? देवताओं की पत्नी, सारे देवताओं की पत्नी नहीं, गिने चुने देवताओं की पत्नी। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति 100% इस संसार में शुद्ध हो जाता है, भगवत धाम जाने के योग्य हो जाता है, उसको डायरेक्टली भगवत धाम नहीं भेजा जाता, उसको पहले एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए एक ऐसे ब्रह्मांड में भेजा जाता है जहां भगवान की लीला चल रही है, ताकि भगवान के साथ रहकर, भगवान अपने नित्य पार्षदों के साथ आते हैं, उनके साथ रहकर थोड़ा ट्रेनिंग लो किस तरह से वो सेवा करते, देखो तुम भी सीखो। ऐसा कोई कुकिंग सीखना है तो एक एक्सपर्ट कुक, टीचिंग सीखना है तो एक्सपर्ट टीचर के बगल में खड़े रहो, उनके साथ ट्रेनिंग लो, सीखो। इस तरह से भगवान जब अपने नित्य पार्षदों के साथ अवतरित होते हैं तो इनको कहा जाता है जो सिद्ध हो चुके हैं अपने जीवन में, उनको एक जीवन का मौका भगवान जहां लीला कर रहे हैं वहां दिया जाता है, ताकि वो ट्रेनिंग हो जाए। उनको ट्रेनिंग हो गया, अभी समझ में आ गया भगवान को किस तरह से सेवा करना है, डायरेक्टली जाके खड़ा नहीं होना, दास 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 अनुदास, समझा? समझ गया, समझ गया। डायरेक्टली जाके प्रभु दूध का बॉटल नहीं, किधर देने का, वहां से उधर, वहां से उधर, वहां से उधर, वहां गोपी भरतुर पद कमल और दास 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 अनुदास, इस तरह से ट्रेनिंग दिया जाता है। ऑफकोर्स राधा रानी सबको तो सामने भेजती है, मेरे से भी श्रेष्ठ भक्त ने, तो ये प्रेमयी लीला। तो सभी स्त्री नहीं, ये कौन सी स्त्री है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं उपेंद्र की मां अदिति, शुद्ध भक्त थी वो। ऐसे स्त्रियों को बोला जाता आओ भाग लो, सीखो, ट्रेनिंग लो और भगवत धाम जाओ। जनानिवास प्रभु एक बार बोल रहे थे, प्रभुपाद ने एक बार डीटी सर्विस का जो मेन पुजारी था एक मंदिर का, उसको बुलाया प्रभुपाद ने और बोला तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, बहुत सौभाग्यशाली हो। तो क्यों? बोले तुम भगवान के इतने निकट हो, तुम भगवान के इतने निकट हो। और फिर बोले जो ऐसे पूर्ण रूप से भगवान की सेवा करते हैं उनको परिपूर्ण अवस्था प्राप्त करने के बाद कोई दूसरे लोक में जाके ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं, वो सीधा भगवत धाम जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऑलरेडी ट्रेनिंग मिल चुका है, अगर अगर वो सही तरह से सेवा करे तो, परंपरागत गुरु के निर्देशन में सनातन गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी ने हरिभक्ति विलास पर बहुत सारे विस्तृत रूप से तरीके बताए किस तरह से, किस भावना से सेवा करनी चाहिए। और विग्रह की सेवा मतलब सिर्फ मैं और विग्रह, कनिष्ठ अधिकारी है वो, कनिष्ठ अधिकारी सिर्फ भगवान की सेवा करता है, भक्तों के साथ बुरा व्यवहार करता है। 11वें स्कंद के 27वें अध्याय भागवत में भगवान श्री कृष्ण पूरा एक अध्याय विग्रह की सेवा कैसी करनी है बताएं, और वहां बोलते हैं भगवान का जो भक्त है, जो पुजारी सेवा करता है, उसको हर एक व्यक्ति में उसी भगवान का स्वरूप देखना चाहिए। हमेशा अपने आगे भगवान को देखना चाहिए, अपने पीछे, अपने ऊपर, अपने नीचे, दाएं बाएं, सबको भगवान को, जिसकी मैं सेवा कर रहा हूं वही इस व्यक्ति के, इन व्यक्तियों के हृदय में भी है, तो वो कैसा अपराधी बनेगा किसी के प्रति? ये तो फिर अहंकार हो जाएगा, देखो मैं सेवा कर रहा, तुम लोग क्या, तुम लोग गए गुजरे लोग। अब देखेंगे मायापुर में जनानिवास प्रभु पिछले 30-35 साल से सेवा कर रहे हैं, उनका व्यवहार देखिए भक्तों के प्रति, नया नया भक्त, कोई एकदम नया व्यक्ति आया, किस तरह से उनके प्रति व्यवहार है उनका, एकदम नया व्यक्ति या कोई भक्त है, सन्यासी से लेकर कोई नया भक्त है, सबके प्रति सच ए पर्सन के नेवर बी ऑफेंसिव, अपराध भावना है ही नहीं, इतने सम्मान पूर्वक, इतने प्रेम पूर्वक सबसे व्यवहार, क्योंकि वो देख रहे हर एक जीव में वही जिनकी मैं सेवा कर रहा हूं, हर एक के सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट हो, हृदय अर्जुन तिष्ठति, तो मैं उधर खुश कर रहा हूं पर इधर कष्ट पहुंचा रहा हूं, दुख पहुंचा रहा हूं, मेरे व्यवहार से, मेरे वचनों से, तो फिर इसका मतलब क्या? ये ढोंग हो गया सिर्फ विग्रह सेवा, कनिष्ठ स्तर हो गया, ढोंग नहीं, कनिष्ठ स्तर है बस। और अपने आप को मैं बहुत समझता हूं क्योंकि मैं आयस्ता विग्रह की सेवा, तो इतनी आसान चीज नहीं है। शुद्ध भक्त होने के बाद भी हमें जहां भगवान की लीला हो रही है वहां भेजा जाता है, और वहां ट्रेनिंग लेने के बाद फिर भगवत धाम जाना। तो इस तरह से संभवं तु सुरस्त्रियः और तत्प्रियार्थम। देवता मतलब क्या? तो देवलोक में होगा वो देवता नहीं, हमेशा जो सोचे मनसा वाचा कर्मणा, मन से वाणी से और तन से मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, बोल रहा हूं, सोच रहा हूं, क्या ये भगवान को प्रसन्न करेगा? सुनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर् हरितोषण। अगर मेरा सोचना, ये सोच विचार, ये शब्द और ये कार्य अगर भगवान संतुष्ट नहीं हुए तो फिर क्या लाभ? पूरी दुनिया गुणगान करे तो क्या लाभ? यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, हमें सोचना चाहिए ये सब करने के बाद क्या हम अपने गुरु के साथ खड़े हो सकते हैं, बोले हाँ, वो दिखा के कह सकते हैं कि मैंने जो किया सही, ठीक ठाक, सही सलामत किया, इसमें कोई और उद्देश्य नहीं था। क्योंकि भगवान अपने हृदय में है। पूरी दुनिया को हम धोखा दे सकते हैं, अपने आप को धोखा दे सकते हैं, पर तो भगवान को नहीं दे सकते। हमसे अच्छा वो हमको जानते। कपटता जो है सहन नहीं करेंगे भगवान। प्रामाणिकता जो है, सिंसियर डिवोटी, अगर ये एक चीज है, प्रामाणिकता है हमारे में, सिंसियरिटी है, तो निश्चित रूप से बड़ा आसान हो जाता है भक्ति। भक्ति सिंपल फॉर द सिंपल, कॉम्प्लेक्स फॉर द कॉम्प्लिकेटेड। मन के स्तर पर भक्ति करोगे, मन के स्तर पर भक्ति करेंगे तो इसका अंत नहीं है। इतना जटिल हो जाता है, समझ नहीं पाएंगे। पर हृदय से करेंगे, प्रेमांजन अच्छुरित भक्ति विलोचन, प्रेम से करेंगे, नम्र से करेंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान। तत्प्रियार्थम, हमेशा हमको सोचना चाहिए क्या मैं जो सोच रहा हूं, क्या मैं जो कह रहा हूं, क्या मैं जो कर रहा हूं, क्या भगवान संतुष्ट होंगे इसे? अगर होंगे, आप कहेंगे हमको मालूम ही नहीं प्रभु, कैसे पता चले भगवान संतुष्ट है? पूछ रहे प्रभु जी आप संतुष्ट हो क्या? उनका SMS नंबर दो ना, कॉल नंबर दो, फोन नंबर दो। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, हमें नहीं मालूम, तो उनके प्रतिनिधि से पूछना है, क्या उसे प्रसन्न है तो ठीक है। सो तत्प्रियार्थम, क्योंकि उन्हें मालूम है ये देवतागण, उनके अंदर उनकी कमियां मालूम है, इंद्र को मालूम है, पर इंद्र को बार बार क्यों भगवान बचाते हैं? थप्पड़ मारते फिर बचाते, सुधर मूर्ख कहेगा, ऐसा नहीं करने का, फिर वही करते। पर फिर भी उन्हें मालूम है कि उद्देश्य अच्छा है, क्योंकि बेचारा थोड़ा फंस जाता है, कमियां है उसके अंदर, त्रुटियां हैं, पर प्रयास कर रहा है। सो तत्प्रियार्थम वासुदेव कलानंत सहस्र वदन स्वराट अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकीर्षया। फिर ब्रह्मा जी कहते देवताओं को, कृष्ण का सबसे अग्रजी अग्रणी स्वरूप संकर्षण है जो अनंत कहलाता है, वह इस भौतिक जगत में सारे अवतारों का उद्गम है। भगवान कृष्ण के प्राकट्य के पूर्व यह आदि संकर्षण कृष्ण को उनकी दिव्य लीलाओं को प्रसन्न करने के लिए बलदेव के रूप में प्रकट होगा। प्रिय चिकीर्षया, जैसे बलराम जयंती में हमने चर्चा किया, बलराम जी में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, दोनों भगवान है, दोनों भगवान है, एक दोनों में एक ही अंतर है, सिर्फ उनका रंग और उनका भाव। रंग कृष्ण घने बादल के समान है और कृष्ण जो है सफेद बादल के समान है, कॉटन, रुई रुई, सफेद रुई के समान, एक सफेद गोरे हैं, एक काले हैं, और दूसरा क्या, एक सेव्य भगवान है, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, और बलराम जी जो है सेवक भगवान, उनका एक ही उद्देश्य जीवन में कृष्ण को प्रसन्न करना, और उसके लिए कुछ भी करने, और हृदय से जानते हैं कृष्ण को क्या प्रसन्न करेगा, हृदय से जानते हैं कृष्ण को क्या प्रसन्न करेगा। फिर कहते हैं ब्रह्मा जी, विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत आदिष्टा प्रभुनामशेन कार्यार्थे संभविष्यति। विष्णु माया कहलाने वाली भगवान की शक्ति जो भगवान की ही समान है, भगवान की ही समान है, भगवान कृष्ण के साथ साथ ही प्रकट होगी। यह शक्ति विभिन्न पदों पर कार्य करती हुई भौतिक तथा आध्यात्मिक सभी जगतों को मोहने वाली है। वह अपने स्वामी के अनुरोध पर भगवान का कार्य संपन्न करने के लिए अपनी विविध शक्तियों सहित प्रकट होगी। पहले बलराम जी आएंगे, आसन वासन तैयार करेंगे। जो प्राइम मिनिस्टर आता है ना, पहले एक सिक्योरिटी फोर्स आता है, देखता है बॉम्ब बॉम्ब है क्या, ये है क्या, ठीक है क्या, बैठने का जगह ठीक है क्या, ये सब चेक करके बाद में जाते, सब तैयारी करते। इतना अच्छा उदाहरण नहीं है, क्योंकि उन लोगों को डर रहता है हमेशा, बड़े बड़े मिनिस्टर लोगों को, भगवान को डर नहीं है, पर सेवक को बहुत चिंता है कि भगवान का आना रहना सब स्मूथ कंफर्टेबल रहे, इसीलिए पहले से आके सब तैयारी करके जाते। जिस गर्भ में भगवान आने वाले हैं, छठ गर्भ, ऐसे लोग प्रवेश किए थे असुरिक लोग, उसको तैयार करके मैं वहां से निकलूंगा। जैसे बेडिंग तैयार करते हैं ना, कोई आ रहा है तो उसके लिए सोने का जगह, बैठने का जगह, हाथ धोने के लिए सब तैयार है क्या? हाँ सब, वेरी गुड। कोई महान पुरुष आ रहा है तो हम तैयार करते हैं सब, कहां बैठेंगे, क्या करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इस तरह से बलराम जी आए, सब तैयार करके गए संकर्षण के रूप। तत्पश्चात भगवान के साथ साथ विष्णु और माया देवी श्वेताश्वतार उपनिषद में एक सुंदर श्लोक है जो कहते हैं कि भगवान की बहुत सारी शक्ति है, बहुत सारी शक्ति है, पर सारी शक्ति का स्वरूप एक ही है, उसके अलग अलग प्रकट प्राकट्य होता है। परास्य शक्तिर विविध ही वसूयते, विविध रूप में प्रकट होती है वो, पर वो है एक ही, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, वो एक ही शक्ति है, पर आध्यात्मिक संसार में अलग से कार्य करती है, भौतिक संसार में अलग से कार्य करती है, पर काम एक ही है, यया सम्मोहितो, दोनों को भुला देती है। यशोदा माई को भुला देती है कि ये भगवान है, नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरा बच्चा है, इसको दूध नहीं पिलाऊंगी तो बीमार पड़ जाए, पर वो भुलाना योग माया है, वो माया जो भगवान के निकट प्रेममय रिश्ता में जोड़ता है, ये तो प्रेम जैसा होगा। अगर मुझे मालूम है ये भगवान है, इसको क्या दूध पिलाएंगे, ये तो मेरे को दूध पिलाएगा। तो भगवान जानबूझ के योग माया के द्वारा ढक लेते हैं, ताकि उस भक्त का जो हृदय है वात्सल्य रस में सेवा करने का, उस सेवा को स्वीकार करने के लिए एक बच्चा बनकर, और यशोदा माई को लगता ही थी मेरा बच्चा है, कुछ भी बोलो तुम लोग, ये बच्चा ही है। कभी कभी भगवान हटाते एक क्षण के लिए पर्दा, तो यशोदा माई सोचती बाप रे, पूरे मुंह में ब्रह्मांड है, दंडवत प्रणाम, अच्छा नहीं लगता, ये दंडवत क्या कर रही है, मुझे मां मुझे दंडवत करी नहीं। फिर उठती है तो भगवान मुस्कुराते मुस्कुराते सब भूल जाते, ऐसे प्रेम से मुस्कुराते हैं योग माया। क्या सपना देख रही, जो भी हो मिट्टी मत खाना, चल अंदर, योग माया है। बलराम जी को एक जगह से दूसरा ले जाना योग माया थी, तो हमारे लिए कौन सी माया, महामाया। एक बार एक सन्यासी बोल रहे थे, वो एक सेंटर में गए थे और वहां दो व्यक्तियों का बातचीत सुन रहे थे, तो एक भक्त दूसरे से कह रहा था, हाउ आर यू, कैसे हो? तो उसने कहा आई एम स्ट्रगलिंग इन लाइफ। तो दूसरे भक्त ने पूछा, आर यू स्ट्रगलिंग टू रिमेन हियर और गेट आउट ऑफ हियर? संघर्ष कर रहा, संघर्ष यहां रहने के लिए कि बाहर निकलने के लिए? संघर्ष तो करना ही पड़ेगा हमको इस संसार में जीने के लिए। पापी पेट का सवाल है, संघर्ष करना पड़ेगा, और यहां से निकलने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। है अनश्वस्थान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, घर्षण है, इधर संघर्ष करना पड़ता है। पर वो माया त्रिगुणात्मकी, त्रिगुणात्मयी माया हमें भुला देती है। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्याय, भुला देती है। और मैं ये शरीर हूं और ये सब मेरा है, इस तरह चलाती है। पर अगर व्यक्ति भगवान की शरण जाए तो वही महामाया योग माया बन जाती है, योग माया बनकर भगवान के निकट ले जाती है। वही माया, माया देवी वही है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक ही है पर उसको हीटर से लगाया तो गर्मी निकलती है, उसको कूलर से निकाला तो ठंडी होती है, उसको बल्ब से निकाला तो प्रकाश निकलता है, फैन से निकाला तो पंखा घूमता है। तो फैन का इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब का इलेक्ट्रिसिटी, हीटर का, कूलर का इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी एक ही है। पर कहां से गुजरता है वो? भगवान गीता में कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मैं सबके हृदय में बैठा हूं, स्विच मेरे हाथ में है, तुम सिर्फ इच्छा करो, तुम इच्छा करो मैं लाल बटन दबाऊंगा, तुम भोग करना चाहते हो मुझे भूल कर तो मैं महामाया का बटन दबा दूंगा। क्योंकि तुम भोग कैसे कर सकते हो जब जानते हो कि ये किसी और का है? अगर मैं सड़क पे जा रहा हूं और मेरे को भूख लगा तो जो घर पहला दिखा उगर दरवाजा खोल के अंदर घुस के फ्रिज में खाऊं, पागल आदमी करेगा। जो भूल जाता है उसको लगता है कि मेरे ही घर, तब कर सकता है, उसके बाद भी थप्पड़ पड़ेगा उसको। मूर्ख व्यक्ति करता हम इति मन्यते जनस्य मोहोयम अहम ममेति। तो अगर हम भूलना चाहेंगे तो भगवान अंदर से भूला देंगे। क्यों? क्योंकि हम तीव्रता से चाहते हैं, मैं भोग करना चाहता हूं, भोग करना चाहता हूं, अलग से आपके विरुद्ध आपसे घूम के करना चाहता हूं। ठीक है, अपोहनम च, दबा दिया लाल बटन, जा बेटा भोग कर, मार खा, लात खाने के बाद आए, खूब लात खाने के बाद मार लाठी खाए तब बुद्धि आती है, तब अरे प्रभु बहुत हो गया, शरण दे ले, शरण ले ले, शरण में ले ले। अंदर से बोलने की जरूरत नहीं है, तीव्र इच्छा हो तो ऑटोमेटिकली स्मृति ज्ञानम नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात्मया च, आपकी कृपा से अंदर से आपने लाल बटन को दबाकर नीला बटन दबा दिया। और ये नीला बटन कौन सा है? स्मृति और ज्ञान का। तो भगवान की शक्ति जो है, एक शक्ति भुला देती है हमें, दूसरी शक्ति जो है ज्ञान प्रदान करती है, स्मरण प्रदान करती है। जीवेर स्वरूप कृष्ण रमित्यदास ममैवांशो जीवलोके। जो व्यक्ति हमेशा उस बटन को, नीले बटन को ही दबा के रखता है, वो बटन हमारे हाथ में नहीं है दुर्भाग्यवश। हमारे हृदय में अगर दो बटन होता कितना अच्छा होता, लाल बटन जब चाहे दबाया, नीला बटन, हमारे हाथ में नहीं है, वो तो हृदय में है और अंदर से वायर डाल के घुमा नहीं सकते। वो हमको भगवान को बोलना पड़ेगा कि प्रभु ये बटन बंद करो, अब ये दूसरा बटन चालू करो, अपोहनम का बटन बंद कर दीजिए और स्मृति और ज्ञान का बटन दबा दीजिए। और इसका रहस्य कहां है? प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय के 34वें श्लोक में। मैं नहीं बोलूंगा, अगर बोलूंगा तो आप भागवतम नहीं पढ़ोगे, इसका उत्तर चाहिए कि बटन कैसा, लाल बटन बंद करके नीला बटन दबाना है अगर भगवान को बोलना है कि प्रभु अपोहनम का बटन बंद कीजिए और स्मरण और स्मृति और ज्ञान का बटन दबाइए, तो इसका उत्तर प्रभुपाद जी के मुख से सुनना है। तात्पर्य में प्रथम स्कंद तीसरा अध्याय 34वां श्लोक के तात्पर्य में कितने लोग पढ़ेंगे? बहुत आलसी हो भाई, उठाते ही नहीं हाथ। चलो ठीक है, बता देता हूं आप लोगों को, फिर भी पढ़ लेना आप। जब भगवान दो चीज हमें देखते हैं, पश्चाताप और तपस्या, तीव्र पश्चाताप कि छी मैंने गलती की, मैंने गलती की, जो भी किया आज तक जो भी किया गलती किया, अब फिर से कभी नहीं करूंगा। और तपस्या क्या है? फिर से कभी नहीं करूंगा। अगर बार बार कर रहे हैं इसका मतलब पश्चाताप हुआ नहीं। तीव्र पश्चाताप का मतलब तौबा तौबा, आप भी जन्म भर नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। वही दीक्षा का मतलब है। दीक्षा में हम लोग दो वचन लेते हैं, कम से कम, साथ में तीसरा लेते हैं। पहला 16 माला जप करूंगा, 4 नियमों का पालन करूंगा, मांसाहार नहीं, नशा नहीं, व्यभिचार नहीं, जुआ नहीं, और दासानुदास बनकर इस आंदोलन में काम करूंगा। बोलना बड़ा आसान है, दास 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 अनुदास, वाह कितना अच्छा लगता है, राइमिंग, दास 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 अनुदास। तो पश्चाताप क्या है? आज तक मैंने अपना गुणगान किया, ईश्वरो हम अहम भोगी, प्रभु आज से मैं आपका गुणगान करूंगा क्योंकि मैं आपका दास हूं, मैं अपने आप को प्रभु समझता था, गलती किया मैंने, गलती किया, अहम ममेति अहम ममेति, आज से मैं से कम 2 घंटा तो आपका गुणगान करूंगा। ये 16 वाला जप करने का मतलब है पश्चाताप। आज तक मैंने अपना गुणगान किया, अपना गुणगान सुना और अच्छा लगता था ये, अभी मेरा खुद का गुणगान मुझे अमृत जैसा लगता था, पर अभी कोई कहता है कि तू महान है, विष्णु 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 विष्णु, चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया, विष्णु विष्णु, जीव कभी भगवान नहीं हो सकता, प्रभु नहीं हो सकता, मैं दास हूं। तो इसका स्वरूप है 16 माला कम से कम, ऐसा नहीं कि 16 माला हो गया तो हो गया, नहीं, कम से कम। कीर्तनीय सदा हरि, सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा मैं आप, क्योंकि मैं दास हूं, दास का काम है भगवान प्रभु का गुणगान करना। तो पश्चाताप का लक्षण है ध्यान पूर्वक तीव्रता के साथ श्रद्धा भाव से निरपराध भाव से ये 16 माला जप करना, कम से कम, हो सके तो हमेशा भगवान का कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करना, किस किस तरह से कृपा दे रहे हैं, कुछ कुछ अच्छे विचार आए तो भगवान की कृपा से, कुछ अच्छी चीज बोल पा रहे तो भगवान की कृपा से, बलम बलवताम चाह बुद्धिर बुद्धिमताम, क्यों अहंकार हो रहा है हमको, सब बोरोड प्रॉपर्टी है, सब उधार पे लिया हुआ है, क्यों अहंकार होता है, हमेशा कीर्तनीय सदा हरि। और वो कौन कर सकता, तृणादपि सुनिश्चिंतरो जिसको अहंकार नहीं, और पश्चाताप। और तपस्या क्या? फिर से गड़बड़ी नहीं करूंगा, आज तक मैं ऐसा बोलता था, आपके सामने आके अगरबत्ती घुमाता था, फिर वापस जाके वो हाथी जैसा स्नान करके फिर से मिट्टी में लुढ़क लूं, अब से मांसाहार नहीं, नशा नहीं, व्यभिचार नहीं, जुआ नहीं, कितना भी अच्छा लगे मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं फिर से जाके लुढ़कता था। ये तपस्या का दिखाना चाहिए भगवान को, और जब बड़ी सख्तता से इसको पालन कर रहे हैं तो हम भगवान को चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, प्लीज प्लीज प्रभु कृपया आज तक जो लाल बटन अपोहनम का था वो बंद कर दीजिए, आज से मैं आपका गुणगान करूंगा, मुझे स्मृति दीजिए कि मैं आपका दास हूं, और मुझे ज्ञान दीजिए कैसे आपकी सेवा करूंगा, दासानुदास बनकर। तब भगवान, तब वही चीज जो महामाया थी वो योग माया बन जाए, चीज वही है, कुछ बदलने वाला नहीं है दुनिया में, दुनिया वही रहेगी। एक फूल देखते थे तो सोचते थे वाह ये मेरे गर्लफ्रेंड को दूंगा। पर जब से भगवान की सेवा शुरू हुई है, अच्छा फूल दिखा, वाह ये टर्बन में लगाएगा तो कितना अच्छा दिखेगा। योग माया, देखिए अभी बगीचे में फूल देखते हैं, हाँ ये फूल अच्छा लगे, ये टर्बन में ऐसा लगाएंगे, ऐसा लगाएंगे, ऐसा लगाएंगे। कुछ कपड़ा देखे, ये कपड़ा भी सुंदर वस्त्र बनेगा, वाह। कुछ खाद्य देखे, ये माधेन्द्रपुरी, माधेन्द्रपुरी जब गए, खुद के लिए भीख मांगते, भीख में नहीं मांगते थे, अपने आप अयाचक वृत्ति, कोई मिला तो खाते थे, कुछ भी खाने की इच्छा नहीं। पर जब उन्होंने देखा कि भगवान को खीर लगाया जाता है, इच्छा हो, काश मुझे भी एक थोड़ा टेस्ट मिलता और ऐसा मैं अपने गोपाल को चढ़ाता, तो तब वही शक्ति जो माया में फंसा रही थी वो हमारे लिए योग माया बन जाएगी। ये माइक्रोफोन, इस माइक्रोफोन में पॉलिटिशियन अपना गुणगान करते हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मुझे वोट दो, बाद में तुम लोगों को दिखाऊंगा कौन बॉस है कौन दास है। पहले दास 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 करता है माइक्रोफोन लेके, उसके बाद वही माइक्रोफोन लेके फट निकल यहां से, 5 साल तक पूछना नहीं, ख्वाब पी के मैं डकार मारूंगा, बाद में देखूंगा। माइक्रोफोन वही है, पर भक्त इच्छा होती है ये माइक्रोफोन में 1000 लोगों को मैं हरिनाम सुनाऊं, तो माइक्रोफोन वही है, माया है ये, त्रिगुणों से बनी हुई, भूमि जल अग्नि वायु आकाश से बनी हुई। परिवार के सदस्य हैं भोग करने के लिए, अहम ममे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, सब लोग मेरी सेवा करो। पर जब भक्त बन गए, नहीं, सब भगवान का एक मौका दिया उनको सेवा के लिए, वस्तु वही रहेगी, वस्तु नहीं बदलेगी, सिर्फ भावना बदलना है। और जैसा भावना बदले, थोड़ा स्विच घुमा दिया, तो वही माया, महामाया जो बंधन का कारण है, वही माया योग माया बनकर मुक्ति का कारण बन। विश्वम पूर्ण सुखायते, दुख का कारण था, दुखालय अशाश्वतम है, पर भक्त के लिए जब कारुण्य कटाक्ष वही भवगता, जिसको महाप्रभु की कृपा मिली है, विश्वम पूर्ण सुखायते, प्रभु आप मुझे यही रखो चलेगा, नरक में भी डालो चलेगा। शिवजी को कहते, शिवजी कहते पार्वती जी को, इसके प्रसंग में आपने 6 स्कंद में चित्रकेतु के प्रसंग में अपवर्ग स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अभी तुल्यार्थ दर्शन, क्यों? क्योंकि जो भी मैं नरक में हूं तो वहां भी नरक की चीजों को लेकर प्रचार करूंगा। प्रभुपाद वृंदावन में थे, रूप गोस्वामी के राधा गोविंद देव की सेवा कर रहे थे, नरक में गए लॉस एंजलिस में, न्यूयॉर्क में, वहां के बावरी में भिखारी लोग जैसे लोग रहते, उनको एक बार ऐसे घुमाते घुमाते एक ऐसा गंदा पिछवाड़े, घर के पिछवाड़े से ले गया, जो दुर्गंध आ रहा था, तो जो ले जा रहे थे बोले सॉरी प्रभुपाद मैंने आपको बहुत गंदगी से ले आया, गंदगी तो वैकुंठ, वैकुंठ न्यूयॉर्क का सारा कचरे का पेटी, सुबह सुबह आप मार्केट में जाएंगे तो सारा कचरा भरा रहता है ना, अभी तक कॉरपोरेशन वाले ने क्लियर नहीं किया। वहां से गुजर रहे थे सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक जा रहे, सारा कचरा पड़ा हुआ था, अभी तक कॉरपोरेशन क्लियर नहीं किया, दुर्गंध आ रहा था, और दुर्भाग्य कहीं तो घुमाते घुमाते गलत टर्न ले लिए तो उसमें से निकलना पड़ा। प्रभुपाद बोले सॉरी 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 आपको बहुत गंदी जगह, बोले गंदी जगह वैकुंठ है, क्यों वैकुंठ अनुभव कर रहे थे? क्योंकि एक ही उद्देश्य से वहां गए थे, वो अमेरिका देखने नहीं गए, हम जाते हैं अमेरिका देखने, दर्शन करने, वो वहां दर्शन सुनाने गए थे, भगवत दर्शन कराने गए थे, उनका एक ही उद्देश्य था, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे ये हो चाहे वो हो, जो कुछ भी मिला लगा दिए भगवान की सेवा। विश्वम पूर्ण सुखायते, ऐसे भक्त के लिए महामाया का सवाल ही नहीं है, क्योंकि हमेशा वो स्मरण करते प्रेम है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदय विलोकयन्ति, उनके एक ही सोच रहे किस तरह से मैं सेवा करूं, किस तरह से, किस व्यक्ति को भी देखो, इस व्यक्ति को सेवा में लगाना, उस व्यक्ति को सेवा, उसको लगाना, इसको लगाना, ये भी अच्छा रहेगा, इस तरह से होगा तो बहुत अच्छा। इस तरह से विष्णु और माया वो जन्म लेगी और इस तरह से कार्य करेगी, कार्यार्थे संभविष्यति, और जैसी जैसी लोगों की इच्छा है वैसे प्रकट होगी वो। कंस के लिए महामाया मूर्ख, तू समझ रहा है तू मार देगा, तेरे मारने वाला बच्चा जो है कहीं जन्म ले लिया, प्रेम से थप्पड़ मारी उसको। माता थप्पड़ भी मारती है तो वो भी उसका प्रेम का लक्षण है, पर जो मूर्ख बच्चा समझता है माता को थप्पड़ मार रही, थप्पड़ मारने वाली आवरणिका और उन्मुख दो प्रकार की माया है। कंस के लिए आवरणिका माया महामाया, और वसुदेव के लिए, बलराम जी के लिए, देवकी के लिए, नंद महाराज के लिए, यशोदा माई के लिए, गोपियों के लिए, गोप बालकों के लिए उन्मुख माया, भगवान की ओर और उनका प्रेम बढ़ाते रहना और बढ़ाना मान इंतजाम करती है। योग माया जो है वृंदावन में सब इंतजाम करती है अच्छी तरह से। चले समय हो गया, चीटी दूर से आ रहा है तो समझ जाता है मैं योग माया से था, अभी वहां थोड़ा महामाया, मैं ऐसे दुनिया में था जहां समय ही नहीं होता, फिर हमको याद दिलाए प्रभु आप कोल्हापुर में हो, वैकुंठ में 7:08 हो गया। तो इच्छा है कभी चलते रहते भागवत कथा कर सकते हैं। तो जन्माष्टमी आ रही है और इस भावना से तैयारी करना है। एक सुंदर श्लोक है, जन्माष्टमी के दिन शायद पढ़ेंगे, जब भगवान जन्म लिए वसुदेव जी इतना उत्साहित हो गए, इतना संतुष्ट हो गए, बहुत बड़ा उत्सव मनाना चाहते थे, बहुत बड़ा उत्सव। क्या करते, जेल में है बंधे हुए, तो मन ही मन उन्होंने 10,000 गाय दान दी। तो आप बोलेंगे उसमें क्या है, मैं भी दे सकता हूं अभी बैठे बैठे। सचमुच में वो चाहते थे 10, और उसका सबूत क्या है, जिस दिन वो बाहर निकले पहला चीज क्या किए, 10,000 गाय को लेकर दान दिए। ऐसा नहीं है कुछ है नहीं तो तेरे को 100 तोला सोना दान दिया, क्यों किसका किसके बाप का क्या जाता है, तेरे को 2 गाय कहां है तू ढूंढ ले। ऐसा दान देना है नहीं, ऐसा दान दिए ऐसा नहीं, 10,000 गाय मन ने सोचे। उस समय शक्ति नहीं थी, उस समय परिस्थिति ऐसी थी, आपके साथ पहले उन्होंने पहला काम किया 10,000 गाय दान दिए। इतना आनंद कि मेरे इष्ट देव जिनका मैं आराध्य देव मेरे सामने एक बच्चे के रूप में प्रकट हुए, अद्भुत बात, पूरा ब्रह्मांड इनमें है और ये देवकी के गर्भ में मेरे बच्चे के रूप में आए हैं। एक प्रकार से प्रेम भी हो रहा है, दूसरे प्रकार से ऐश्वर्य भाव मिश्रण था उनका, उनको प्रणाम करे या गले लगाए तो थोड़ा भ्रमित हो गए, आंखों से आंसू आ रही है, और फिर प्रार्थना करने लगे। ये प्रेम का लक्षण, अगर सचमुच में प्रेम का लक्षण है, प्रेम का लक्षण मतलब इस उत्सव को ऐसा मनाना चाहिए पूरा अपना शक्ति डालकर। क्यों बोले, प्रेम बढ़ेगा हमारा जिस हद तक इस उत्सव को अच्छे से मनाएंगे, हमारा प्रेम बढ़ेगा, क्योंकि प्रेम का लक्षण है त्याग, मतलब कुछ समय देना, कुछ शक्ति डालना। दूसरा, एक साधक के लिए भगवान की भक्ति में प्रगति करना है तो उत्सवों को अच्छे तरह से यथाशक्ति पूर्ण रूप से मनाना चाहिए। कि नियम है ये, जो प्रेम भक्त है उसको बोलने की जरूरत नहीं, अच्छा से कर भाई, पूरा अच्छा से, थोड़ा जितना हो सके खर्चा करके अच्छा से कर, बोलने की जरूरत नहीं है, प्रेम होने के कारण खुल के करेगा। जो साधक है उसको नियम बनाया गया, अच्छे तरह से करो, फ्रेश फूल लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, चालू काम मत करो, अच्छे तरह से करो, प्रेम से करो। और इसके द्वारा प्रचार भी अच्छा होगा, क्योंकि जो भी व्यक्ति आएगा और देखेगा, बाप रे किसका नाम दिवस है, कृष्ण, कौन नहीं है कृष्ण, कौन है, अच्छा क्यों उसकी पूजना है। और जो भी व्यक्ति और हमारी भावना और सेवा भाव ऐसी होनी चाहिए कि जो भी व्यक्ति ऐसे वातावरण में प्रवेश करे उसको लगे कि ये जगह से छोड़ के जाना नहीं चाहिए। आपस में वो प्रेम, और वो कब होगा? जब हम एक दूसरे को दास के रूप में देखते हैं और हम अपने आप को दासानुदास के रूप में देखते हैं। वो कृष्ण के दास हैं, हम उनके दासों के दास हैं। तो बहुत सुंदर मौका है प्रगति करने के लिए, प्रेम बढ़ाने के लिए, भक्ति में स्थित होने के लिए, भगवान की खास कृपा प्राप्त करने के लिए और कृपा बांटने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग सब लोग। मैं सुना बहुत प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए प्रवचन के लिए नहीं आ पाए दो दिन। मैं बोला क्यों नहीं आए, थोड़े सारे सब लोग कलेक्शन के लिए जा रहे हैं ताकि अच्छा हो, उत्सव बड़ी अच्छे से मने। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जन्माष्टमी के लिए ये थोड़ी बहुत चेतना भी तैयारी करनी चाहिए हमें, ये सिर्फ रीति रिवाज नहीं है, भावना होनी चाहिए। रिचुअल बिकम स्पिरिचुअल व्हेन देयर इज द स्पिरिट, स्पिरिचुअल माइनस द स्पिरिट बिकम सिंपली अ रिचुअल। तो स्पिरिचुअल कब होगा? जब रिचुअल नहीं है, एक सिर्फ रूढ़ी ऐसा क्या बोलते हैं, हाँ या करना है बोल के करने के लिए। स्पिरिट, स्पिरिट इज लव एंड एंथुसियाज्म, उत्साह और प्रेम। निश्चित रूप से भगवान आदान प्रदान करेंगे, खास उस दिन, उसी लिए तो आए हैं, जन्म लिए हैं वो। तो कृपया हमें प्रयास करना है जितना हो सके अच्छे तरह से उस दिन प्रार्थना करना, सेवा करना और एक अनुकूल वातावरण बनाना जिससे लोग भी प्रगति करें, हमारा भी प्रेम भगवान के प्रति बढ़े। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री निताय गौरचंद्र की। श्री कृष्ण भगवान की जय। निताय गौर प्रेमानंद। धन्यवाद।